आहान ने रौनक के बाल पकड़ रखे थे और रौनक ने आहान के बाल खींच रखे थे। दोनों ही किसी एक बात को लेकर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अब आगे ये नज़ारा देखकर सब एक दूसरे की ओर अविश्वास देखने लगे। वहीं राधिका, वंशिका, रश्मि और आस्था का दिल जोरों से हंसने का कर रहा था, क्योंकि ये सिचुएशन काफी फनी थी। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के बाल खींचते हुए झगड़ रहे थे। अब जल्दी से दादाजी उन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई में कूद पड़े और उन दोनों को नाराजगी से देखकर अपनी आवाज कड़क करते हुए आहान से पूछते हैं, अरे ये क्या कर रहा है नालायक? रौनक बिटिया के बालों को क्यों खींच रहा है? उसके बालों में दर्द हो रहा होगा। ये क्या कर रहा है तू? तेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो तू उसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? अब जैसे ही दादाजी ने वहां आकर आहान को थोड़ा तेज आवाज में डांटा, तो वैसे ही आहान रोनी शक्ल बनाकर दादाजी से पूछता है, दादाजी आप मेरे दादाजी हैं कि इसके दादाजी हैं? आप जब देखो सिर्फ इसकी साइड लेते रहते हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कभी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं लड़ाई की शुरुआत नहीं करता हूँ, लड़ाई की शुरुआत हमेशा यही करती है। मैं हमेशा इसी की सारी बातें मानता हूँ। इतना ही नहीं, रात रात भर बैठकर इसकी पैर तक दबाता हूँ, उसके सर में तेल लगाता हूँ, पैरों की मसाज करता हूँ, लेकिन ये है कि मेरी एक बात नहीं मान सकती। ये ऐसा कैसे कर सकती है? अब जैसे ही आहान ने रोते हुए ये सारी बातें कही, तो वैसे ही सभी लोग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बातें गौर से सुनने लगे। वहीं रौनक भी अब रोते हुए दादाजी की ओर देखकर एकदम से बोलती है, दादाजी ये सारी गलती इस बंदर की है, ये मेरी कोई बात नहीं मानता है। अब रौनक के मुंह से ये बात सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल नासमझी में देखने लगे और परेशान होकर सोचने लगे कि आखिर ऐसे भी क्या बात हो गई जो ये दोनों इस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं। तभी आस्था ने कुछ सोचते हुए सीधा नानी माँ को तिरछी नजरों से देखकर कुछ इशारा किया। नानी माँ ने देर न करते हुए तुरंत उन दोनों के पास चली आई और रौनक के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए वो कोमलता से बोली, रौनक बिटिया क्या बात है बिटिया, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी नानी माँ हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। अब नानी माँ को अपने सामने देखकर रौनक का दिल भर आया। वो अपने आंसू रोकते हुए बताती है, आपको पता है नानी माँ, थोड़ी देर पहले मैंने इस छछुंदर से बोला कि मेरी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो ये मेरे साथ चले, तो इसने मुझे बोला कि मैं किसी ड्राइवर के साथ या फिर वंशिका दीदी, राधिका दीदी या रश्मि दीदी के साथ चले जाऊं, लेकिन मैं अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूं। ये ऐसे कैसे कर सकता है नानी माँ, क्या इसे मेरे साथ नहीं जाना चाहिए? अब रौनक की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और सोचने लगे, रौनक तो बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी ऐसी हालत में उसके पति का उसके साथ होना बेहद जरूरी है, तो फिर आहान उसे इस तरह से मना कैसे कर सकता है? तब आकाश आहान को नाराजगी से घूरते हुए बोला, आहान ये क्या बदतमीजी है, तो इस बात के लिए रौनक को कैसे मना कर सकता है? आकाश की आवाज में गुस्से को भांपते हुए आहान एक पल के लिए ठिठक गया और अगले ही पल चिड़चिड़ी आवाज में बोला, हाँ हाँ आकाश भाई आप भी मुझे डांट लो, आपने इसकी तो पूरी बात सुन ली लेकिन मेरी कोई बात सुनी? आकाश भाई शायद आप भूल रहे हैं कि हमें कितने इम्पोर्टेंट काम करने हैं, ऊपर से अगर अम्मान भाई ने एक बार भी इसे मेरे साथ में देख लिया तो वो हम दोनों का भी टाइगर भाई और मारिया दीदी की तरह तलाक करवा देंगे और मैं इसे अलग नहीं रहना चाहता। ये मेरी बात समझती क्यों नहीं है कि हम इस तरह एक साथ खुले हम बाहर नहीं जा सकते? अब जैसे ही आहान ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई तो वैसे ही सब लोगों का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। वहीं आकाश रश्मि को बेचैनी से देखने लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले रश्मि ने भी आकाश से अपने साथ चलने की बात कही थी, लेकिन आकाश ने भी अरमान का हवाला देकर उसकी बात टाल दी थी कि वो अकेले ही अपना ध्यान रखे और अपना चेकअप वगैरह खुद ही जाकर करवा लें, क्योंकि अगर गलती से भी अरमान ने उन्हें देख लिया तो लेने के देने पड़ सकते थे। वहीं सुमित भी अगले ही पल शांत नजरों से राधिका को एकटक देखने लगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले राधिका को भी अंश के लिए और रौनक और रश्मि के होने वाले बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, तो उसने सुमित को अपने साथ चलने की जिद की थी, ये कहकर कि अपने बच्चे के लिए ना सही पर कम से कम वो दूसरे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए उसके साथ चल सकता है। लेकिन सुमित ने भी उसे यही बात कहकर टाल दिया था कि वो इस वक्त उसके साथ कहीं जाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वहीं ध्रुव और वंशिका का भी यही हाल था। अब सब जोड़ियां एक दूसरे की ओर निराशा और लाचारी से देखने लगते हैं। वहीं आस्था को उन सबकी आंखों में छुपी एक हल्की सी निराशा दिखी और उसके मन में ये भी बात चल रही थी, अरमान जी की वजह से कितने सारे शादीशुदा कपल्स की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इन लोगों के बीच इतनी सी भी दूरी कभी नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो हल्का सा मुस्कुराई और सीधा रौनक के सामने आकर कॉन्फिडेंस से खड़ी हो गई और रौनक का साथ देते हुए बोली, रौनक तुमने बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं कही और आहान भैया आप भी गलत नहीं हो, कहीं ना कहीं मिस्टर सिंघानिया की बीमारी की वजह से आप सब एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों से भरे मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे, जिससे आप सबकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ रहा है। ये आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, आपकी जिंदगी का कितना बड़ा दिन आने वाला है, आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में आप कपल्स को अलग अलग रहना चाहिए। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि बहुत जल्द मैं मिस्टर सिंघानिया को आप लोगों की शादी के बारे में बता दूंगी। आस्था के शब्द किसी धमाके की तरह थे। सभी घर वालों की आंखें शौक से खुली की खुली रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं सुमित तुरंत आगे आया और आस्था को समझाते हुए हल्के गुस्से में बोला, आस्था ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम चाहकर भी ये बात अरमान को नहीं बता सकते। सुमित की बात से सहमत होते हुए ध्रुव आगे आया और सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, एग्जैक्टली भाभी, हम इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और शायद आप भूल रही हैं कि अरमान भाई ने टाइगर भाई की शादी का सच जानने के बाद किस तरह का फैसला लिया था। आस्था के ये शब्द सीधे उनके दिल पर लगे थे। सभी कपल्स एकदम से हड़बड़ा गए और वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। लेकिन तभी आस्था फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ऐसी सिचुएशन बनाऊंगी कि खुद ब खुद मिस्टर सिंघानिया को सब कुछ पता भी चल जाएगा और उनके दिमाग पर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। आप सब लोग मुझ पर भरोसा रखिए। फिलहाल शायद आप लोग भूल रहे हैं कि कल हमें फेस्टिवल भी मनाना है और अभी तक हमने रघुवंशी मेंशन को अच्छे से क्लीन भी नहीं करवाया है, तो मैं वहाँ जाकर तब तक सारा काम संभालती हूँ और इस मेंशन को क्लीन और डेकोरेट करवा देती हूँ। फिर हम कल शाम को वहीं पर अपना त्योहार मनाएंगे। वहीं आस्था की बात सुनकर सबने अगले ही पल हामी भरी और अब सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई। और तभी रौनक ने खुश होकर आस्था को गले से लगा लिया और धीरे से बोली, थैंक यू आस्था मेरी बात को समझने के लिए, लेकिन मुझे भी अरमान भाई की फिक्र है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आहान से ऐसी जिद क्यों कर बैठी। ये बोलते हुए रौनक के चेहरे के चप्पे चप्पे पर केवल गिल्ट ही गिल्ट नजर आ रहा था।
रौनक की आवाज में झिझक सुन आस्था मुस्कुराई और रौनक के माथे को चूमकर बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्रेगनेंसी में लेडीज के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनका दिल जो चाहता है उन्हें वही करना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाओ तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, समझी? इतना कहकर आस्था ने जल्द ही अपनी भाषा में रौनक का गिल्ट कम कर दिया। वहीं रौनक आस्था की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती है, मानो जैसे उसके दिल में सुकून सा घुल गया हो। फिलहाल आकाश बोला, मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, अरमान किसी भी वक्त नीचे आ सकता है, इसलिए सब फटाफट नीचे चलो। आकाश की बात में हामी भरते हुए सब एक एक करके नीचे जाने लगे। आखिर में आहान ने रौनक को गले से लगाकर कहा, सॉरी जान, मैंने तुम्हारे बाल जोर से खींच दिए, अगर तुम चाहो तो एक बार और मेरे बाल खींच सकती हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं शाम को तुम्हारे बालों में अच्छे से तेल मसाज कर दूंगा और तुम्हारे बाल फिर से मजबूत बनाऊंगा। वहीं आहान की बात सुनकर अगले ही पल रौनक मुस्कुरा उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पर रोएं या हंसे, उसके पास कहने के कोई शब्द नहीं थे। फिर अचानक आहान ने कुछ सोचते हुए आईब्रो चढ़ाई और एकदम से चिल्लाया, मुझे चैंप के लिए बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है, मैं फटाफट ले आता हूँ। ये सुनते ही रौनक की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। उसने सोचा, आहान अंश को कितना प्यार करता है, वो उसे रेसर बनाना चाहता है, बॉक्सर बनाना चाहता है, चैंपियन बनाना चाहता है। अगर उसे लड़की हुई तो क्या आहान उसकी बेटी से भी उतना प्यार ही करेगा जितना वो अंश से करता है? ये सोचकर रौनक के मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया और उसका दिल अनजाने में धड़क उठा। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से सहलाया। रौनक आमतौर पर ढीले ढाले कपड़े पहनती थी जिससे उसका पेट दिखाई नहीं देता था। अरमान तक को पता नहीं था कि रौनक प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को इतनी बारीकी से नोटिस नहीं किया सिवाय आस्था के। वहीं सब लोग फिर से नीचे जाकर अपना नाश्ता करने डाइनिंग टेबल बैठे। वहीं आस्था कुछ गहरी सोच में खोई हुई थी। तभी अचानक आस्था ने देखा कि वसुंधरा अभिमान जी को घूर रही है और अंश अभिमान जी की गोद में था। ये देखकर आस्था कन्फ्यूजन में पड़ गई, क्योंकि जब से वो इंडिया वापस आई थी उसका पूरा ध्यान अरमान की सेहत पर था, बाकी लोगों को उसने इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन अब वसुंधरा को देखकर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगीं और उसने नानी माँ के कान में कुछ कहा। आस्था अच्छी तरह जानती थी कि नानी माँ वसुंधरा से ही उसके मन मुताबिक काम करवा सकती हैं। थोड़ी देर बाद जल्द ही वीर और वसुंधरा नानी माँ के सामने अदब से खड़े हो गए और नानी माँ ने दोनों को ऊपर से नीचे तक तंज भरी नजरों से देखा और फिर उन्हें तीखी आवाज में बोली, जैसा कि आप दोनों को पता है, कल शाम हम जन्माष्टमी का त्यौहार रघुवंशी मेंशन में ही मनाएंगे। आप लोग एक काम करो, दो नौकरों को लेकर जाओ और वहां मेंशन की सफाई करो। नानी का आदेश सुनते ही वसुंधरा और वीर एक दूसरे की तरफ मुंह बनाते हुए आश्चर्य से देख रहे थे। वीर अपनी माँ की ओर देखकर धीरे से फुसफुसाया, सचमुच मॉम, अगर मुझे सिंघानिया मेंशन या अंपायर का लालच नहीं होता तो मैं सबसे पहले इस बुढ़िया को मारकर गार्डन के किसी कोने में दफना देता। ये बोलते हुए वीर की आंखें गुस्से से सुलग गईं। नानी माँ ने चश्मा ऊपर नीचे करते हुए अपनी आंखें मटकाई और उनसे पूछा, ये आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जल्दी जाओ और रघुवंशी मेंशन की सफाई करवाओ और अच्छी तरह सारा काम करो। वैसे भी वसुंधरा, तुम कभी घरेलू औरत नहीं रही, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि सजावट कैसे करनी है। एक काम करो, इंटरनेट पर देखकर सीख लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम तुम्हें सब कुछ समझाएं। चलो अब फटाफट रघुवंशी मेंशन जाओ। ये कहकर नानी माँ ने वीर और वसुंधरा को तंज कसते हुए वहां से भेज दिया। इधर आस्था जो ये सारी बातें सुन रही थी उसे मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि पहले वसुंधरा को हर तरह की चीजें आसानी से मिल जाती थी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, मगर जब से अरमान ने उसे बर्बाद किया है तब से वसुंधरा और वीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन अब वसुंधरा की ये हालात देखकर कहीं ना कहीं आस्था के बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था।